ये नहीं कहा जाएगा कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा भी वहां तशरीफ चली जाएगी, लेकिन अगर फर्श के साथ फर्श हुसैन जुड़ जाए, नाम हुसैन जुड़ जाए, मजलिस मजलिस आम मजलिस ना रहे, मजलिस से अजाए हुसैन हो जाए, तो ये सारे के सारे शरफ नाम हुसैन के पीछे पीछे ऐसे चले आते हैं कि जैसे रसूल ने फरमाया, अलीजुन महल हक वल हक महली या दूरुल हक को हैसो मादारा, जहां जहां अली चले जाएंगे हक वही वही पर आएगा। अब हुसैन इब्ने अली, अगर तुम अजादारा ने हुसैन इब्ने अली, ऐ अजादारो हुसैन के, ऐ गमखारो ज़हरा के बेटे के, तुम अगर बाशरफ होना चाहते हो तो दामन हुसैन का थाम लो, इसलिए कि अगर तुमने हुसैन इब्ने अली का दामन थाम लिया तो ये सारे के सारे शरफ तुम्हारे कदमों में आकर जमा हो जाएंगे। बहुत अहमियत है निस्बत की। निस्बत, अगर मैं इसको आसान करूं, कोई नाम किसी के नाम के साथ जुड़ जाना, कोई लिंक किसी चीज के साथ जुड़ जाना, मंसूब कर देना किसी चीज को किसी चीज के साथ। हम और आप कभी अपने घर की चौखट पर खड़े होते हैं, यानी घर के दरवाजे में जाते हैं, बेल बजाते हैं, अगर बटन है बेल, बटन वाले बेल है वो बजाते हैं, या कुंडी है उसको खटखटाते हैं, या दरवाजा है उसको बजाते हैं, इंतजार करते हैं कि अंदर से कोई आएगा दरवाजा खोलने वाला। तो जब कोई आ जाता है दरवाजा खोल के, हमें अंदर आने का इस्तकबाल इस्तकबालिया देता है, हमें रिसीव करता है, जल्दी नहले खाना में से कोई है, तो अब हम क्या करेंगे? जब दरवाजा खोलेगा घर के अंदर जाते जाते क्या पहले चौखट को चूमेंगे फिर घर में जाएंगे? नहीं, लेकिन चौखट हमारे घर की चौखट लकड़ी की बनी है, लोहे की बनी है, सोने की बनी है, चांदी की बनी है, जिस चीज की बनी है, लेकिन जब यहां से चलकर दरे हुसैन इब्ने अली पर जाते हो, चौखट को बोसा भी लेते हो, अपनी नाक भी रगड़ते हो और उसके बाद फिर अंदर जाते हो, क्यों? क्योंकि निस्बत जुड़ गई है, निस्बत जुड़ गई है, वो चीज मंसूब हो गई है। तवाफ करते हो एक चार दीवारी का, नहीं, एक घर का, नहीं, बैत का, नहीं, बैत का तवाफ नहीं करते, बैतुल्लाह का तवाफ करते हो, यानी वो सिर्फ घर नहीं है, जुड़ा हुआ है किसी नाम के साथ, और उस अजीम तरीन नाम के साथ जुड़ा हुआ है कि जिससे बड़ा कोई नाम नहीं है, जिससे बड़ी कोई जात नहीं है। यही वजह है कि उस घर को सारे घरों में फजीलत दी गई और तवाफ उस घर का रखा गया। तो क्यों एहतराम करते उस घर का? इसलिए कि वो सिर्फ घर नहीं है, अल्लाह का घर है। क्यों एहतराम करते उस चौखट का? क्योंकि वो आम चौखट नहीं है, सिर्फ चौखट नहीं है, हुसैन के दर की चौखट है। अब आ जाओ घर का खाना खाते हो, जब डॉक्टर के पास जाते हो, खुदा ना खास्ता परवरदिगार जितने मरीज है सबको शिफाए कुल्ली इनायत फरमा, अगर कोई मरीज होकर तभी के पास जाता है, तभी नुस्खा लिख कर देता है, देखो दवा ये है, परहेज ये है, परहेज ये है कि चर्बी वाला खाना नहीं, ज्यादा मीठा खाना नहीं, ज्यादा नमकीन खाना नहीं, तो डॉक्टर साहब ये तो सब नहीं खाना, खाना क्या है वो तो बताएं, ये सब नहीं खाना, घर पे आए जो लाया जा रहा है ये नहीं खा सकते, मना किया है, ये नहीं खा सकते, मना किया है, घर के दस्तरखान पर तो ये होगा, लेकिन जब मेरे मौला हुसैन के तबरुक का दस्तरखान सजेगा, सिर्फ ये कहकर छोड़ोगे नहीं कि नहीं खाना, बल्कि कहोगे लाओ, इसके अलावा भी और कुछ है तो लेकर आओ, इसलिए कि अगर ये खाऊंगा तो मरीज नहीं, अगर बीमार हूं तो भी शिफा मिलेगी। इसलिए इसलिए कि सिर्फ खाना नहीं है भैया, ये सिर्फ कोई खाने वाली चीज नहीं है, ये सिर्फ गजा नहीं है, ये अब तबर्रुक बन चुका है, ये हुसैन के दस्तरखान से मंसूब हो गया है, ये हुसैन के नाम से जुड़ गया है। अब आप बोले बोल रहे क्या बातें, छोड़े ना, 2020 चल रहा है, आ जाए आज की दुनिया में भी वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, बी प्रैक्टिकल, आप इस दुनिया में आके नहीं हो, क्या बातें कर रहे हो। तो ठीक है, फिर कल से जिस दुकान का आयोजन किया है मुर्गी और गोश्त खरीदने के लिए, जहां से मिल जाए ले लिया करें, इसलिए कि अब फर्क तो पड़ता नहीं है कि अल्लाह के नाम से मंसूब करके जिबा किया है कि नहीं किया है, ये भी तो निस्बत है ना। क्या सुन रहे हैं, मैंने क्या अर्ज किया, क्या मैंने पैगाम देने की कोशिश की, जो मैं बात निस्बत की कर रहा हूं, जब मैं कहता हूं कि अल्लाह का नाम लेके जिबा करोगे हलाल, अल्लाह का नाम लिए बगैर जिबा करोगे हराम। अरे भाई आप मुझे आकर कहेंगे जाके पढ़िए तौजी में लिखा है कि गोश्त खाना, गोश्त का गोश्त खाना ठीक है, चिकन खा सकते हैं। तो जब ये जो अल्लाह ने हलाल गोश्त हैवान रखे हैं उनका गोश्त अल्लाह ने खाना हलाल रखा है, तो फिर अल्लाह का नाम ले न ले क्या फर्क पड़ता है। कहा नहीं, शर्त ये है कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ, अल्लाह की तरफ से हलाल किया हुआ, अल्लाह के नाम से मंसूब करके ज़िबा करोगे तो हलाल, नहीं करोगे तो हराम। ये सबको समझ में आता है, जब अल्लाह की बात करते तो सबको समझ में आता है, जब अल्लाह के प्यारों का जिक्र करते हैं तो सोच में पड़ जाते हो। तो अब मैं बात को एक मरहला आगे बढ़ाऊं, बैतुल्लाह, नबीउल्लाह, काबतुल्लाह, अतबतुल हुसैन, अतबतुल आइमा, और यहां तक कि वो गोश्त के जो हलाल गोश्त है लेकिन अल्लाह के नाम से जोड़ कर खाए, खाओगे तो ठीक, नहीं। ये जो मजलिस से हो रहे थे ना, ये जो मजलिस से हो रहे, बात याद रखिएगा कि हम और आप इमाम हुसैन पे कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर वो ये समझता है कि हम ये मजलिसें करेंगे और मौला का जिक्र करेंगे तो मौला पहचाने जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, आपा को आइमा को पहचाने जाने की या पहचानवाने की कोई मोहताजी नहीं है। इनको इस बात की एहतियात नहीं है कि इनका जमीन में जिक्र हो, जिनका जिक्र आसमानों पर होता हो उन्हें क्या इस्तेमाल है, बेनियाज है वो, उन्हें बेनियाज है। जिनका जिक्र जिन पर दुरूद भेजने वाली जात रब्बे जुल्जलाल की हो, अब इसमें क्या ताज्जुब की बात है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लून अला नबी, क्या आयत कुरान में है, या वो भी चूंकि अहले बैत की शान में थी तो आपने इतना कह नहीं है, तो अल्लाह और उसके मलाइका किस पर, तो ना कोई हकीम खिताबत करता है इसलिए कि अहले बैत को पहचानवाए, यकीनन मारिफत का दर्स तो यहीं से होता है जब बयान किया जाता है, तो जब अहले बैत का जिक्र करते हैं तो अल्लाह ने उनके जिक्र में तासीर रखी है, जैसे अल्लाह ने कुरान करीम की आयतों में तासीर रखी है कि जो कुरान सामित की आयतों को पढ़ता है तो दिल के नूर में इजाफा होता है, आंखों के नूर में इजाफा होता है, उसी तरह से जब नातिकाने कुरान का जिक्र होता है, जब उन अहले बैत अथार आइमा का जिक्र सुनते हो तो तुम जिक्र उनका सुनते हो, दिल के ईमान के नूर में तुम्हारे इजाफा होता है कि अल्लाह ने उनके जिक्र में तासीर रखी है, मौजज़ा की जिक्र है। अच्छा, तो ना कोई जाकिर इसलिए जिक्र करता है कि अहले बैत को पहचानवाए, कोई ऐसा नहीं करता, ना कोई हकीम खिताबत इसलिए करता है, ना कोई मुसन्निफ तसनीफ इसलिए करता है, ना कोई शायर शायरी इसलिए करता है, बल्कि ये सारे अहले बैत को नहीं पहचानवाते, ये सारे के सारे अपनी पहचान करवाते हैं कि देखो हमारा ताल्लुक उस ग्रोह से है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, उससे नफरत करने वाले नहीं। अब मैं आपको दलील कोई मिसाल के जरिए से आपकी खिदमत में बात पेश करूंगा। मैं मिसरे पढ़ता हूं, शायर का नाम आप लीजिएगा, शाह हस्त हुसैन बादशाह, शर्माया कितना सुनो, सब अपने बैठे हुए, शाह हुसैन तीन हस्त हुसैन, यहां रुक जाए, क्या कहा, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह हुसैन बादशाहों का बादशाह हुसैन, फिर क्या कहा, दीन अस्त हुसैन, हुसैन को दीनदार समझने वाले बहुत मिल जाएंगे भैया, हुसैन को दीन मानने वाले बहुत कम मिलेंगे,
भाई दीनदार तो हम हैं जो हुसैन से दीन लेकर अमल करके दीनदार बनते। अरे जब शागिर्द दीनदार हो उस्ताद कम से कम दीन होना चाहिए। हुसैन का हर कदम दीन है, हुसैन की हर जुम्बिश दीन है, हुसैन का आगे बढ़ जाना दीन है, हुसैन का पीछे हट जाना दीन है, हुसैन खड़ा हो जाए तो इमाम है, हुसैन बैठ जाए तो इमाम है। दी बलास हुसैन सरदार बदा दस दर दस्ते यजीद हत्ता के बिना है बिना ला इलाह। ला इलाह पढ़ते हो उसकी बुनियादों में जाकर देखा कि कौन छुपा हुआ है। बुनियाद हुसैन है जिस पर ला इलाह टिका हुआ है। तुम चाहते हो हुसैन इब्ने अली को हटा दो, गलत है। तुम हुसैन को नहीं हटा रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियादों को हिला रहे हो, अल्लाह की बुनियादों को हिला रहे हो। अच्छा तो बात ही नहीं हो रही, बात क्या हो रही, किसने लिखे ये मिसरे? ठीक खाजा चिश्ती। अब सारे मिलकर आ खाजा शायर थे जमीन शेर था, तो इनका कोई दीवान होगा, शायर का दीवान होता है, एक बुक होती है, उस बुक के अंदर शायर अपनी शायरी को जमा करता है, उसको दीवान कहते हैं, साहिब दीवान शायर है। तो ये मिसरे तो आपने सुना दी और माशाल्लाह बच्चे बच्चों को याद है। साजा के इन मिसरों के अलावा कोई एक मिसरा सुना सकते हैं? आप सारे मिलकर भी खाजा का इन मिसरों के अलावा एक मिसरा नहीं समझा सुना सके। और ये मिसरे जो हम सबको इतने पक्के याद है वो हमारे अपनी मादरी जबान में भी नहीं है, फारसी जबान में याद है। तो अब मुझे सवाल करने की इजाजत दीजिए कि क्या इन मिसरों ने इमाम हुसैन को पहचान पाया या कयामत तक इन मिसरों ने खाजा को अमर कर दिया?
सवाल का जवाब यह है, इसलिए
یعنی یہ زمین پر آ رہے ہیں خدمت کے لیے, اہل بیت کو نہیں پہچان پاتے, اپنے آپ کو پہچان پاتے. کیوں؟ اللہ نے انسانوں کو, ملائکہ کو, جنات کو, انسان کو, حیوان کو, جمادات کو, نباتات کو, ہر چیز کو خلق کیا. اللہ کی ساری کریشن, جتنی اللہ کی خلقت ہے, جو جو اللہ نے پیدا کیا, اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں, ان میں سب سے زیادہ تعداد میں اللہ کی جو مخلوق ہے اسے ملائکہ کہتے ہیں, فرشتے. جتنی زیادہ تعداد میں اللہ نے فرشتے پیدا کیے, اتنی زیادہ تعداد میں اللہ نے کچھ بھی اور پیدا نہیں کیا. کتنوں کے نام ہمیں یاد ہیں, مگر جو حسین کا جھولا جھلانے آ گیا اس کا نام یاد ہے, مگر جو حسین کو لوری سنانے آ گیا اس کا نام یاد ہے, جو سیدہ کی چکی چلانے آ گیا اس کا نام یاد ہے, جو حسنین کا درزی بن کر آ گیا اس کا نام ہمیں یاد ہے. تو سمجھ لو انسان تو انسان, یہ ملائکہ بھی آسمان سے زمین پر اہل بیت کی پہچان نہیں, اپنے آپ کو تعارف کروانے کے لیے زمین پر آ رہے تھے تاکہ دنیا قیامت تک انہیں یاد رکھے کہ یہ اہل بیت کے نوکر تھے. ملائکہ تو خداؤں, آپ اگر مجھ سے کہیں گے کہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں سوائے حدیث کو اور کہیں سے نہیں پڑھ رہا. بل ملائکہ تو خداؤں, کہ ملائکہ ہمارے خدام ہے, ملائکہ ہماری خدمت کرنے والے ہیں, اور یہ ان کا شرف ہے. وہ کہتے بارلا انسان کو تو معراج دیتا ہے, آج پر بلاتا ہے, ہمیں بھی تو کبھی معراج کروا. تمہاری کیا معراج ہے؟ کہا ہمیں اجازت دے دے کہ ہم زمین پہ درے فاطمہ زہرا پہ چلے جائیں, صرف اس چوکھٹ میں جا کے جھاڑو لگا کر بھی آ جائے تو ہماری معراج ہو جائے گی. یہ سچ بات ہے. عقیدت کی جو شمع ہے نا, یہ روشن رہنی چاہیے. یاد رکھیے گا, اگر ایمان اور عقیدے کی شمع بجھ گئی تو نسلیں ویران ہو جائیں. یاد رکھیے گا عزیزو, اور یہ فرش اعلیٰ, یہ فرش اعلیٰ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو یہ اب بات بہت آگے بڑھ جائے گی اگر اس کو ہم نے تلا نہیں کیا, اس کو ہم یہ روکتے ہیں. انسان بس اتنا سمجھ لے, اگر معراج حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو لا کر اہل بیت کے در پہ جھکا دے. اگر یہ خود کو یہاں لا کر جھکا دے گا تو اہل بیت اسے اٹھا دیں گے, اتنا اٹھا دیں گے کہ آسمان پر جا کر سورج کی طرح روشنی دینے کا کام کرنے لگے. بس, اور یہ نسبتیں ہیں عزیز, یہ چونکہ نسبت جس چیز سے جھوٹتی چلی جا رہی ہے. آپ کہتے کہ میں فلاں بینک کے ایڈوائزر کا ڈرائیور ہوں, بھیا ماشاء اللہ بھائی آپ کی اچھی پوسٹ ہے. آپ کہیں میں کسی فلاں اسکول کے پرنسپل کا ڈرائیور ہوں, کہا جائے گا کہ بھائی ماشاء اللہ بڑی بات. آپ کہیں میں صوبے کے بڑے کسی عہدیدار منسٹر وغیرہ کا ڈرائیور ہوں, او بھائی وہ میرا کام ہے, ذرا یاد رکھنا. جب آپ اور ایک ایک مرحلہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے, جتنی بڑی شخصیت کے ڈرائیور بنتے چلے جائیں گے, میں اسی طرح سے اس کو رکھتا ہوں آسان رہے گی بات سمجھنے کے لیے, جتنے بڑے انسان کے ڈرائیور بنتے چلے جائیں گے اتنا مقام آپ کا بھی بڑھتا چلا جائے گا. یہ کیسے آپ کا مقام بڑھ گیا؟ آپ میں خود کیا تھا جو آپ کا مقام بڑھ گیا؟ آپ کا نام اس کے نام سے جڑ گیا تھا, اس لیے آپ کا نام بھی بڑا ہو گیا. بس اگر تم اپنا نام بڑا کرنا چاہتے ہو تو بڑی ہستیوں کے دروازے پر آ جاؤ. اور اہل بیت کا اظہار وہ ہے کہ جنہیں خود اللہ نے محبت سے یہ کہہ کر اپنی امامت سے نوازا ہے, اپنی امامت سے نوازا ہے. اور منسوب جو ہو جائے اہل بیت کے اظہار علیہ السلام سے تو اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے. اب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, آج تھوڑا سا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے بھی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے نسبت کی بات کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا بیوی اور بچے کے ساتھ, زوجہ کے ساتھ اور بچے کے ساتھ, بالکل چھوٹا سا شیر خوار بچہ, دودھ پیتا بچہ لے کر گئے, چھوڑ دیا. اور زوجہ بھی ایسی بائیمان نے کہا ٹھیک ہے آپ اللہ کے حکم کو پورا کرنے جا رہے ہیں, میں یہاں بیٹھوں. نہیں کہا کہ آپ میرا نہیں سوچ رہے, اس بچے کا تو سوچے, کچھ نہیں کہا, جانے دیا. اور جناب ابراہیم گئے اور پھر آئے, اور وہ سارا کا سارا زمزم والا واقعہ ہوا, وہ سب آپ جانتے ہیں, سارا ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس سارے کے سارے فریبوں میں گھر بنایا حضرت ابراہیم نے, اللہ کے حکم سے بنایا. اور وہ گھر کس کا بنا؟ اللہ کا گھر بنایا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا گھر اگر بنا ہے, سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر اللہ کا گھر بنایا ہے تو اللہ کب کب تشریف لاتے ہیں یہاں پہ اسٹے کرنے کے لیے؟ हमला का घर है ना,
तो अल्लाह को जहां भी रहते हो कभी कभार को आएंगे ना स्टे करने के लिए। आप कहेंगे नहीं, अल्लाह ताला जमान वो मकान की कैसे आजाद है, वो जगह नहीं घेरता। सिफात सबूतिया सिफात सदिया पढ़े ना हमने मदरसे के अंदर, तो उसके अंदर यह है कि परवरदिगार हयज नहीं है, अल्लाह ताला जगह नहीं घेरता। उस जगह नहीं घेरता का मतलब यह नहीं कि जगह नहीं घेरता, वो मोहताज नहीं है किसी जगह का भी, यानी वो होने का एहसास दिलाने के लिए जगह का मोहताज नहीं है, बल्कि इतना गनी और बेनियाज है कि अपने होने का यकीन दिलाने के लिए नजर आना भी जरूरी नहीं है उसके लिए। इतनी बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह ने परवरदिगार आलम ने अपने एक मजहर को इसमें जरूर उतारा कि जो परवरदिगार आलम की सिफात का मजहर था। परवरदिगार अलीम है तो ऐसे अली को भेजा कि जो जिब्रील का उस्ताद है, परवरदिगार करीम है तो एक उसकी झलक उसके कर्म की अली में रखी, अली को भेजा। ठीक, अच्छा, अब आप कहेंगे कि अली ने अभी तालिब ही को भेजा, रसूल को क्यों भेजा था काबे में, या ये कह रहे कि अली ने दुनिया में आके कुरान करीम की तिलावत की तो रसूल ने क्यों आके कुरान करीम की तिलावत की। अगर रसूल आते तो ये कौन बताता कि ये अल्लाह का घर है, और रसूल एक मुबारक मकाम में पैदा हुए। अली आए तो रसूल ने बताया कि ये अली की फजीलत है कि अली काबे में आए। अली ने कुरान की तिलावत की तो रसूल ने बताया कि अब तो कुरान नाजिल भी नहीं हुआ, ये जो पढ़ रहे हैं, ये जो मेरी गोद में है, ये जो पढ़ रहे हैं इसे कुरान कहते हैं। तो दरअसल अली का काबे में आना दर हकीकत फजीलत मोहम्मद है। अली ने अभी तालिब का इस दुनिया में आकर कुरान सुनाना दरअसल फजीलत मोहम्मद मुस्तफा है। ठीक, अब जब मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम काबे में तशरीफ लेकर आए और मौलाए कायनात इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो एक वाकया हुआ, ये जो निस्बत की बात है उससे अर्ज कर, वो तो आप सबने सुन रखा है कि जब कपड़े के अंदर लपेटा नौ मौलूद अली ने अभी तालिब अलैहिस्सलाम को, तो जब भी माँ फातिमा बिनत सलाती थी तो देखती थी कपड़ा खुला हुआ है और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक कपड़े से बाहर है और हाथ में जुम्बिश आती है। वो अली के जो रसूल की आगोश में आकर कुरान करीम की तिलावत कर रहा है, जो कि फखरे ईसा है, वो बोला हुआ मातरे गिरामी आप इस कपड़े को न बांधें, इसलिए कि जब आप कपड़ा कपड़े को बांध देती हैं और मेरे हाथ इसमें महसूर हो जाते हैं तो मैं तस्बीह नहीं कर पाता। कपड़े को खुला रहने दे ताकि अली अपनी उंगलियों पर अल्लाह की तस्बीह करता रहे। जरा सोचिए, वो अली के जो तस्बीह करने के लिए सिनों साल का मोहताज ना हो, वो मनसबे इमामत के लिए कहां से सिनों साल का मोहताज होगा। तो वो जो कहते ना अली ने बताते ने कल्ला अजदर को चीरा, वो जो एक अजदहा था कि जिस अजदहे को अली ने अभी तालिब ने दो टुकड़े कर दिया, उसकी दास्तान जानते हैं क्या है? उसकी दास्तान ये दास्तान है कि दरअसल ये अजदहा एक ऐसा अजदहा था जिस अजदहे को हर नौ मौलूद के पास उसके गहवारे के करीब छोड़ा जाता था उस दौर के अंदर, ये पता करने के लिए कि जो बच्चा पैदा हुआ है इसकी विलादत पाकीजा है या नहीं। गौर से सुनिएगा, साथ रखिएगा, ये जो खास अजदहा था कि जिसे मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने दो पारा कर दिया, दो टुकड़े कर दिया गहवारे में झूले में, ये मेयार था और क्राइटेरिया था किस चीज का, जो नौ मौलूद बच्चा है उसकी पाकीजगी को तय करने। अली इब्न अबी तालिब के पास वो अजदहा आया और अली इब्न अबी तालिब ने उस अजदहे को काट कर फाड़ कर दो टुकड़े कर दिया और कायनात को बतला दिया कि आज से अली इस मेयार को तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज से विलादत की पाकीजगी का मेयार अजदहा नहीं होगा, मुझ अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत होगी। जब किसी बच्चे की पाकीजगी को देखना चाहो, उसको परखना चाहो, मुझ अली के पास मेरी औलादों के पास छोड़ देना, अगर उनके साथ खेलने लगे उनके चेहरों को देखकर मुझ
देने की जरूरत है।
जनाबे हजरत इब्राहिम ने वो घर बनाया और परवर
وہ اتنا بلند کر دیا.
وہ پتھر کے جو پتھر آج مقام ابراہیم ہے, اس مقام ابراہیم کے پتھر کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو عظمت ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کے قدم مبارک اس پر پڑے.
جس نبی کے قدم, سنیے گا, جس نبی کے قدم ایک پتھر پر آ جائے تو پتھر مبارک ہو جائے. اب سوچئے گا ان قدموں کا کیا عالم ہوگا جو توشے رسالت پر پہنچ گئے تھے. اور یہ نسبتی میں کہاں تک آپ کی خدمت میں اثر کر چلا جاتا ہے. لیکن نظر محترم جو بات آج کے اعتبار سے بیان کرنی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے, جس میں پیغام ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں رب ذو الجلال نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ نے مبتلا کیا یعنی کہ ٹیسٹ کیا ابراہیم کو, اس کے رب نے جب ٹیسٹ کیا, ایگزام لیا, امتحان لیا, بالکلمات, کچھ کلمات کے ذریعے سے. اب میں کلمات کی تشریح میں نہیں جاؤں گا, اس لیے کہ اصول کافی کی وہ حدیثیں پہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا پڑے گی, جس میں پھر فضائل اہل بیت پوشیدہ ہے. لیکن ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں کسی اور موقع کے لیے انشاءاللہ. صحیح بالکلمات فأتمهن, تو وہ جتنے بھی امتحانات تھے حضرت ابراہیم نے انہیں پاس کیا. اتمهن کا مطلب ہے 100 out of 100 نمبرز لیے, 100 بٹا 100 نمبر لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ نے کہا کہ تعالیٰ اب میں گفٹ دوں گا ابراہیم کو. بھائی بہت بڑی بات ہے, میں نے جتنے ٹیسٹ لیے سب پیپروں میں نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں. جو امتحان لوں 100 نمبر, جو امتحان لوں پیپر میں 100 نمبر. 33 نمبر سے پاس ہونے والے نہیں حضرت ابراہیم, 100 میں سے 100 نمبر, جو پیپر ہے 100 نمبر. تو اللہ نے کہا کہ گفٹ دینا تو حق بنتا ہے حضرت ابراہیم کا. تو اللہ تعالیٰ نے گفٹ کیا دیا؟ 3 بڑے امتحانات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, ایک امتحان مال کا, ایک امتحان اولاد کا, ایک امتحان جان کا. جو مال کا اولاد, مال کا امتحان ہوا ہے وہ یوں ہوا ہے کہ ایک دن حضرت ابراہیم اپنے ریوڑ کے ساتھ, جو ان کے بھیڑوں کا اور جو جانوروں کا ریوڑ تھا جسے وہ چرانے کے لیے صبح صبح نکل جایا کرتے, اور انبیاء کی سنت رہی ہے, انبیاء کا طریقہ رہا ہے کھیتی باڑی کرنے کا اور حیوانوں سے قریب رہنا, حیوانوں کو پالنا, ان کو کھانا کھلانا, ان کو چارہ ڈالنا, ان کو ہکانا, ان کو لے کر چلنا. کسی عالم سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ ہر نبی کی زمانے میں ان کی سیرت میں ملا ہے کہ انہوں نے حیوانوں کی گریبڑ کو پالا. کہا کہ اس لیے, اب وہ عالم اپنا ایک اپنی ایک سمجھ اور اپنی ایک فکر بتا رہے, شیئر کر رہے کہ جو ان کو سمجھ میں آیا. وہ یہ کہہ رہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا, وہ عالم دین کہہ رہے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو مثال کے طور پہ, حضرت ابراہیم کو حیوانات عطا کی یا انہوں نے اپنی مرضی سے حیوانات کو پالا, تاکہ جب حیوان پال لیں گے تو انسانوں کو پالنا سیکھ جائیں گے. اس لیے کہ حیوانوں کو پالنا آسان کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. حیوان آپ کی مرضی سے نہیں چلے گا, جب سونا ہوگا سو جائے گا, جب کھانا ہوگا بھوک لگے گی کھا لے گا, جب یہاں جانا ہوگا وہاں آپ کے احترام میں اٹھے گا بیٹھے گا نہیں, الا یہ کہ آپ سے محبت کرنے لگے, آپ کا ایسا وفادار ہو جائے کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے. لیکن وہ بھی اس وقت تک کہ جب تک نیند نہ آئے, رفع حاجت نہ کرنی ہو یا بھوک نہ لگے. جب یہ 3 پورا ہوں گے تو تب آپ کو بھی چھوڑ دے گا وہ. یہی وجہ ہے کہ جو پالتو شیر ہوتے ہیں کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بالآخر اپنے ہی مالک کو کھا لیتے ہیں کیونکہ بھوک لگتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے اس انداز سے یہ کہا. اب چلے یہاں پر جانور کی بات آ گئی تو میں ایک بات اور عرض کر دوں, کچھ ایسے حیوان بھی نظر آتے ہیں کہ جو انسانوں جیسے لگتے ہیں, مگر وہ اس سرزمین کی بات نہیں ہے, کسی عام سرزمین کی نہیں, یہ جنت کی بات ہے. جو وہ جنت کی جو زمین پر جنت کی نظیر ہے, یہ زمین کربلا کی بات ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے, جو گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے اور جو نہیں جا سکے اللہ ان کو جانا نصیب کرے اور جلد سے جلد راہیں کھولے کہ ہم درے حسین, درے ابوالفضل العباس, درے ائمہ اطہار پر جائیں, زیارت کریں ان کی.
तो जब आप देखते हैं लोग पैदल जा रहे हैं आपको हुसैन के रोजे पर, ऐसा लगता है कि ऐलान हो गया है माइक्रोफोन पे कि आ जाए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं और ऐलान हो गया है जितने मौला हुसैन के अजादार हैं सब जन्नत में जा रहे हैं। और आपने देखा है इतनी तादाद में लोग दौड़ रहे कि जहां देखिए सरी सरे वहां पर इंसान नजर आते हैं, हैवान भी नजर आते हैं। दुम्बे देखिए छोटे छोटे व्हाइट कलर के दुम्बे, गोसफन बकरे नहीं दुम्बे, वहां पर ज्यादा दुम्बे होते हैं। उनके गले में सब्ज रंग का एक पट्टा डला हुआ होता है जो इस बात की निशानी होती है, जो इस बात की निशानी होती है कि ये मेरे मौला पर कुर्बान हो चुका है, अब इसे सिवा करके इमाम अलैहिस्सलाम के इशारे सवाब किया जाएगा। आप देखिए जो इंसान की चाल होती है उस हैवान की भी वही चाल होती है। जितने इत्मीनान के साथ इंसान चल रहा होता है वो हैवान होकर भी उस इत्मीनान के साथ चल रहा होता है, तो हैवान होकर भी कभी उसमें इतनी हिस्सा जाती है, क्यों? क्योंकि उसकी निस्बत ऐसी अजीम हस्ती से जुड़ जाती है। लिहाजा जो हजरत इब्राहिम पर बात कहीं की कहीं निकल जाती है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे हुए अपने रेवड़ के साथ और एक शख्स आया करीब से गुजरा, ये कहता हुआ गुजरा सुबुहुल कुद्दुसुल रब्बुना व रब्बुल मलाइकते, सुबुहुल कुद्दुसुल रब्बुना व रब्बुल मलाइकते व रूह। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुनी ये बात, इतनी खूबसूरत आवाज, कहा ये तो मेरे रब की तस्बीह कर रहा है, जरा सुनना ये तो मेरे रब की तस्बीह कर रहा है। कहा बहुत खूबसूरत आवाज में बोलने की, एक मरतबा और कर सकता है मेरे लिए? कहा बिल्कुल, सुबह सुन रबुना और रबुल मलाइका थे और रूह। जितना रेवड़ था ना उसमें से वन थर्ड एक तिहाई उसको हदिया कर दिया, कहा तूने मेरे रब का नाम लिया इतना खूबसूरत, ये तेरे लिए। कहा ये जो बाकी रह गया इसमें से आधा मुझे दे दूंगा, एक तिहाई और दे दूंगा अगर एक बार और कहकर सुना दे मुझे मेरे रब का नाम, इस अंदाज से जिस अंदाज से तू सुना रहा है। सुबह कर तू सुन रब ना वर बोल मलाई कर वर रूह दे दिया। कहा ये इतना ही बच गया है और यही मैं तुझे दे सकता हूं, ये सारा दे दूंगा, एक बार और मुझे मेरे रब का नाम सुना दे। मोहब्बत देख रहे हैं इब्राहिम को अपने रब से कितनी मोहब्बत है, सुना दिया। और जब वक्त आया कि जो वादा किया है वो पूरा करे तो देने लगे, कहा ये सब तेरा, एक बार और कर दे मैं खुद तेरी गुलामी में आ जाऊंगा। कौन होता है जो इस तरह से जब ये कहा मैं तेरी गुलामी में आ जाऊंगा, तो वो शख्स एक मरतबा लड़ता और कहा मुझे माफ कीजिएगा ए खलील खुदा, आप माफ कीजिएगा अल्लाह के दोस्त है, मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं फरिश्ता हूं जो इंसान की शक्ल में आया हूं, अल्लाह ने भेजा था आपसे आपके माल का इम्तिहान लेने के लिए, अल्लाह आपको बशारत देता है आप 100 में से 100 नंबर लेकर कामयाब हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने समझा दिया, देखो जब किस तरह से किसी से मोहब्बत की जाती है तो अपना सब कुछ उस पर लुटा दिया जाता है। अब हुसैन से मोहब्बत करने वाले अगर मजलिस में लुटाए तो कुछ एतराज न करना, अगर तबर्रुक हुसैन के चाहने वाले को खिलाए तो एतराज न करना, अलम सजाए तो एतराज न करना, सुलझना सजाए तो एतराज न करना, जुलूसों में शरबत पिलाए तो एतराज न करना। ये हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, ये हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हुसैन इनसे मोहब्बत करता है, खुदा इनसे मोहब्बत करता है। अब वो सारे के सारे वाकयात आपने सुने, मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। और तीसरा इम्तिहान जान का, बुतों को तोड़ा और अल्लाह के हुक्म से तोड़ा, सजा क्या मिली कि मिंजीनी बनाओ उसमें हजरत आदम का हजरत इब्राहिम को रखो और उस मिंजीनी के जरिए से उन्हें आग में फिर क्यों गए ऐसे उठा के आग में फिर क्या जाए नहीं हो, आग इतनी बड़ी लगाई गई थी, आग इतनी बड़ी लगाई गई थी कि जिस आग के लिए लोगों ने अपने اپنے اپنے حصے کی لکڑیاں پوری اس قوم نے ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا جس کی جو حیثیت تھی اس نے اتنا حصہ اس آگ کو بھڑکانے کے لیے شامل کیا تھا تاکہ سب کہہ سکیں گے ابراہیم کو جلانے میں ہم بھی شامل تھے. تو اس لیے یہ آگ اتنی بڑی تھی, 3 کلومیٹر کے اوپر پھیلی ہوئی تھی کہ خود بنفس نفیس لے جا کر نہیں اس میں چھوڑا جا سکتا تھا, اس لیے منجنیک بھی بنانی پڑی. منجنیک کیا؟ ایک ایسی مشین کہ جس پہ رکھ کے حضرت ابراہیم کو پش کر کے وہاں پر دھکیلا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا توکل کیا, حضرت جبریل آئے کہتے رہے کہ مدد لے لیں لے لیں لے لیں, حسبی من سؤالی علمہ بحالی. یہ وہ دعا بھی ہے کہ جو ابراہیم کی دعا بھی ہے, اور یہ وہ نسخہ ہے جو علماء کرام نے بتایا, آئمہ اطہار نے سکھایا. یعنی جو اکثر تاریخ انبیاء اب تک پہنچی ہے وہ آئمہ اطہار کے ذریعے سے پہنچی ہے. آخری بیان ہے, بیداروں پر سن لیجیے گا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہے کہ کوئی اتنا تنگ کر رہا ہے کہ اذیت پر اذیت دے رہا ہے, اس دعا کو پڑھنا کثرت کے ساتھ شروع کر. ویسے تو یہ بھی ہے, اور اگر یقین کے ساتھ کوئی صرف بیٹھ کر یا علی یا علی یا علی کہتا رہے تو ساری مشکلیں حل ہو جاتی ہیں.
جو آ جاتا تھا اسے دے دیا کرتے تھے.
कभी अकेले बैठ के खाते नहीं थे हजरत इब्राहिम, कभी अकेले बैठ के नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी भी अकेले बैठ के नहीं खाते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि जब किसी मेहमान को लेकर आए घर में और बिठाया, कहा शुरू करो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा, या भाई अल्लाह का नाम जैसे भी लेते हो तो जमाने में वैसे लिया, और कहा कि तू क्यों नहीं पढ़ता, अल्लाह के नाम से शुरू कर, क्यों मेरा तेरा पालने वाला है। कि मैं आपके खुदा को तो नहीं मानता। अच्छा खड़ा हो जा, चला गेट आउट, मना कर दिया उसको, वहां भेज दिया। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने जब उसे कहा लो अल्लाह का नाम लेके शुरू करो तो खाना मिलेगा, वो जब उठ के चला ना, ये यहां से बाहर गया, फरिश्ता हजरत इब्राहिम पे आया, कब परवरदिगार आलम आपको पैगाम दे रहा है कि ये मेरा मानने वाला नहीं था, ये मेरा इनकारी होकर इतने सालों तक रहा, मैं इसको खिलाता रहा, मेरे दस्तरखान से कभी वापस नहीं गया, हमेशा इसको खिला के भेजा, इस बात के भी बावजूद कि ये मेरा कलमा पढ़ने वाला नहीं था, आज एक दिन इसे मैंने आपका मेहमान बनाया, आपने इसे भेज दिया। और अहले बैत कैसे करीम है, कैसे करीम है। अभी इंशाल्लाह फिर कल मैं आपके हिम्मत में बात कर्ज करूंगा, आज अहले बैत कैसे करीम है वो सुन लीजिए। इस उनवान से जो मसाइब के उनवान में तब्दील हो गया, जनाब इब्राहिम ने देखा कि ये मेरे अल्लाह का मानने वाला नहीं है, वापस कर दिया। और ठीक है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो करे कर सकते हैं, हम हजरत इब्राहिम के ईमान के बराबर ईमान रखते हैं, जो उन पर कोई बात कर सके नहीं, हम तो सिर्फ वो अर्ज कर सकते हैं जो हुआ और उसके मुकाबले में अहले बैत अथारे मुसलमान की क्या फजीलत है, बस वो बता रहे हैं। ये बात याद रखिएगा, कभी भी इन मेंबरों से अंबिया के मकाम को कम करने की कोशिश नहीं होगी, सिर्फ निस्बत बतानी होगी कि अहले बैत अथार वो हैं कि जो अंबिया से भी अफजल है। अहले बैत का अंबिया से अफजल होना इस बात की दलील नहीं है कि अहले बैत अंबिया मासूम नहीं है, अंबिया मासूम है। और ये हमारे 12 इमामियों का यानी हमारा ये अकीदा है कि जितने अंबिया हैं सबके सब मंजिले इस्मत पर फाइज हैं, मगर जैसे मासूम 14 हैं वैसे मासूम कोई नहीं। खैर इस पर फिर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बशर्ते तौफीक व हयात बात होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो जो मुनासिब समझा वो किया, उसे वापस भेज दिया। एक था कि जो रसूल के नवासे का मुखालिफ था, मुखालिफत भी की रास्ता भी होगा, कोई था, मैं ये हमेशा ही कहा करता हूं, कोई था कि जो आया था हुसैन के रास्ते में, किसी ने हुसैन को रुलाया था, कोई था कि जिसने हुसैन का रास्ता रोका था, वो जो भी था उसे हुसैन के करम ने और जहरा की ताजीम ने हुर अलैहिस्सलाम बना दिया, उसे अलैहिस्सलाम बना दिया। हुर आए रास्ता रोकने के लिए, मौला हुसैन ने कहा हुर रुक जाए, फिर बात जो करना चाहता है वो बाद में करना, यकीनन सवाल ये कर आया है ना, कोई तकाजा करना चाहता है वो तकाजा बाद में, हमारी करीमी का तकाजा पहले पूरा होगा कि आने वाले मेहमान को पहले खिलाएंगे पिलाएंगे फिर उसकी बात सुनेंगे। भैया अब्बास पानी के मशकीजे निकाले जाए, हुर को पिलाया जाए, हुर की फौज को पिलाया जाए और हुर की सवारियों को भी पिलाया जाए, यहां तक कि उसके लश्कर में, हुर के लश्कर में एक ऐसा सिपाही था कि जो इतना प्यासा था कि प्यास की वजह से उसके हाथ पांव कांप रहे थे, उसके बदन में पानी की कमी इतनी वाकई हो चुकी थी कि अगर उसको पानी का कूजा दे दिया जाए तो वो हाथों से उठाकर पीने की भी शक्ल न रखे। मौला हुसैन ने जैसे देखा फौरन से मशकीजा और कूजा लेकर उस प्यासे के पास गए, उसके पास जमीन पर बैठ गए, कूजा भरा, पानी का कूजा आगे किया, वो हाथों से पकड़कर कूजा पानी का मुंह को लगाने की भी ताकत नहीं रखता था। हुसैन जैसे करीम बादशाह ने अपने हाथों से कूजा उसके लबों में रख के उसे पानी पिलाया। ये तो हुसैन ने किया उनके लिए, और फौजी अशरिया ने क्या किया, हुसैन ही की 4 साल यतीमा को पानी दिखा दिखा कर कूजे में भर भर कर مدینے کربلا پر گرا دیا۔ عزیزو جناب ہو رہے مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہا، مولا نے کہا کہ اگر تیری بات کو نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ کچھ کہا نہیں انہوں نے، بس مولا حسین کی سواری جو تھی سلجنا کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا، اور یہ علامت ہوتی تھی اس زمانے میں بے ادبی کی۔ مولا حسین نے کہا اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ علماء بیان کرتے، ذاکرین نے بیان کیا، خطبہ پڑھتے ہیں یہ واقعہ کہ جناب ہور کی ولادت، جناب ہور جو انہوں نے دنیا میں آئے تھے دو شہزادوں کی دعاؤں کے نتیجے میں آئے تھے، حسن و حسین علیہ السلام جب حج پر تشریف لے جا رہے تھے، پیاس لگی تھی، ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پانی پیا تھا، گھر والوں نے کہا تھا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی، دعا کر دیجئے، شہزادوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگا، دعا قبول ہوئی، اللہ نے انہیں حور عطا کیا تھا۔ جناب حسین علیہ السلام کہتے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، ابھی میرا دل کہتا ہے شاید یہ وجہ ہو کہ اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اگر تیری ماں کو پتا چل جائے کہ تُو نے یہ کام کیا ہے تو وہ یہ کہے گی کہ میرا بیٹا آج سے میرے لیے مر گیا اور تیری ماتم میں بیٹھ جائے گی۔ میں بات کو بہت پرانی نہ کروں، مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں، رونے کی رلانے کی راتیں، اس لیے کہ انسانوں کا رونا ہمیں نظر آتا ہے، فرشتوں کا گریا اگر دیکھ لیں نا جی تو ہم تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہمارے دل کام کرنا بند کر دے۔ ہم نے تو فرشتوں کا گریا دیکھا کہاں ہے، ہم نے تو جنات کا رونا دیکھا کہاں ہے، انسانوں کا رونا، اور وہ انسان کہ جو سن کے حسین کی مصیبت کو روتے ہیں، زمانے کا امام جو حسین کی مصیبت کو دیکھ کر روتا ہے، اسی لیے تو آنسوؤں سے نہیں خون سے روتا ہے۔ جناب ایک مرتبہ فجر کا وقت ہے، عاشور کے دن نماز پڑھی، اپنے خیمے میں آئے، جنگی لباس سے زیب تنگ کر رہے تھے جنگی لباس، کہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے دوست نے دیکھا کہ حور دوڑتا ہوا اپنے خیمے سے باہر آ رہا ہے، فوراً پہنچ جائے گا، حور کہاں جا رہے؟ اب بھائی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یزیدی فوجوں کو چھوڑ کے اب حسینی لشکر میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہوں۔ حور دیوانہ ہو گیا ہے، حور کیا کہہ رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ حسین کے لشکر میں، اس حسین کے لشکر میں جن کا راستہ تم نے روکا تھا، وہ تجھے قبول کریں گے؟ جب وہ تجھے قبول نہیں کریں گے، یہاں آنا چاہے گا تو یہاں کا باغی کہہ جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، کیا چاہ رہا ہے؟ کہا میرے دوست میں جانتا ہوں کہ میں کس دروازے کو کھٹکھٹانے جا رہا ہوں، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی جھولی لیے واپس نہیں آتا، میں رسول کے بیٹے کے در پہ جا رہا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ مجھے خالی لوٹا دے۔ جناب حر ایک مرتبہ جب احساس ہوا ہے نا تو چلے، مگر کس شان سے چلے گا، میں مجرم ہوں، تو اگر میں مجرم ہوں تو مجھے مجرم کی طرح سے لے کے جاؤ۔ یہ وہ ہاتھ ہے جن ہاتھوں سے لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا تھا، ان ہاتھوں کو باندھو، حر، حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام، یہ چار افراد ہیں۔ کہا یہ آنکھیں، ان آنکھوں پر پٹیاں باندھو، اس لیے کہ اب میں ان آنکھوں کے ذریعے سے اپنے مولا سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، اور اب مجھے ایسے مجرم کی طرح سے لے چلو کہ جیسے اسے اس کے آقا کی بارگاہ کا ہو۔ مولا حسین علیہ السلام کی خیموں کی طرف حر کو، حر کا بیٹا لے کر چلتا ہے، ایک مرتبہ صدائے تکبیر کو بلند کیا، حر نے پوچھا بیٹا تکبیر کیوں کہتے ہو، کون آ رہا ہے؟ کہا علی اکبر شبیہ پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے بچہ کے بڑے تھے، بیٹے نے پھر سے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کون آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں حر نے کہا تھا بیٹا جب کوئی آنے لگے میری آنکھوں پر پٹی ہے تو تکبیر کہہ دینا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ کون آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ جب اب پوچھا ہے نا اللہ اکبر کیوں کہا تو کہا لمبردار لشکر حسینی ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین آ رہے ہیں۔ ارے عباس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کچھ آگے بڑھے تھے کہ حر کے بیٹے نے بہت زور زور سے کہنا شروع کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹا کیا ہوا؟ حر کہنا
देखो मेरे हुस्न मेरे आका आ रहे हैं, सवारी पर सीन पे जहां बैठे ना उनके पांव रकाबों में होंगे। जरा ध्यान से मुझे करीब ले जाओ अपने मौला के, और जहां रकाबों में मेरे मौला के कदम है ना वहां अपने बाबा की पेशानी को ले जाकर रख दो। जैसे ही हुर ने अपना सर आका के कदमों में रखा, एक मरतबा मौला हुसैन जी ने फरश से तशरीफ लेकर आए, हुर को सीने से लगाया, कहने लगे या हुर रंता आखिर दुनिया वाला आखिरा, ऐ हुर तो दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। और ये कहने के बाद फरमाया उस जुमले को बदल रहे हैं मौला ने जो कल कहा था सदनत का उम्मों का या हुर, ऐ हुर तेरे मेरी माँ तेरे मातम में बैठी, वो जुमला मौला ने तब्दील कर दिया, इसलिए कि हुर बदल गया ना। जनाब आका हुसैन ये कहते हैं कि मतलब उम्मों का इस सम्मत कर हुर, ऐ हुर तेरी माँ ने तेरा नाम हुर करके कोई गलती नहीं की थी, इसलिए कि अंत हुर्रों फिर दुनिया व शहीदों फिर आखिरा, ऐ हुर तू इस दुनिया में आजाद है और आखिरत में शहादत मंदों में से हो गया है, ऐ हुर तुझे मुबारक हो जन्नत का राही बन गया। अब तलवार से जो जंग जीतेगा वो तो जीतेगा, मगर जो तूने अपने नफ्स से जंग जीती है उस पर हुसैन तुझे मुबारक बात देते हैं, मगर हो सलाह हुर तेरा आज खुश है कि तू जन्नत की राह पर आ गया, मगर हुर आज तेरा शर्मिंदा भी है, हाथों को जोड़ लिया हुर ने मौला इस शर्मिंदगी कैसी है। ये कहा हुर भैया जब कल आया था दुश्मन बनकर तुम सबको पानी पिलाया था, आज जब भाई बनकर आया है हुसैन इतना गरीब हो गया, तुझे पेश करने के लिए कुजया भी हुसैन के पास नहीं है। हुर कहते मौला अगर मेरी मगफिरत को कबूल कर लिया, मेरी माफी अगर कबूल हो गई ना, तो आप इतनी इल्तिजा है कि मुझे मेरे बेटे को इजाजत दीजिए कि मेरी आंखों के सामने वो आप पर कुर्बान हो जाए। मौला हुसैन ने कहा क्या गजब की बात करते हो हुर, तुम एक तो हमारे मेहमान हो और उसके बाद ये गजब ढा रहे हो कि कहते हो कि मुझे अपने बेटे को आप पर कुर्बान करना है। हुर कहते हैं मेरे मौला मैं चाहता हूँ कि अपने जवान का अंजाम बखैर आपकी अपनी निगाहों से देख कर दुनिया से रुखसत हो जाऊं। हुर का इशरात था, मौला ने इजाजत दी, हुर का जवान घोड़े की सीन पर बैठ कर मैदान कारजार की तरफ चला, जंग की जंग करने के बाद जख्मी हुआ, जमीने करबला पर गिरता देता अपने बाबा को आवाज देता है, यहाँ से करबला के दस्त में धूल उठती है। अली हुर एक मरतबा अपने अपने बेटे के जवान के सहारे जाते हैं, दौड़ लगाकर जब हुर अपने जवान के जख्मी जवान के सहारे पहुंचे ना तो क्या देखा, पहले से आका हुसैन हुर के जवान का सर अपने जानू पर लिए बैठे हैं, हाथों को जोड़कर कहने लगा हुर मौला आपने क्यों ज़हमत फरमाई। आका ने कहा हुर जवान बेटा है बूढ़ा बाप है, कभी जवान लाशे बूढ़े बाप उठाया करते हैं क्या, ये सुनना था। एक मर्तबा करबला की जमीन कांप गई होगी,
इन आवाज़ों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, ان چیخوں پکاروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. مومنین کے آل اولاد اہل و عیال کو حفظ و امان نصیب فرما. پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آمان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بجاه محمد وآله الطيبين الطاهرين.